श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 45 सैनापत्यम
सैनापत्यम
च
राज्यम
राज्यम
च
दण्ड
दण्ड
नेतृत्वम
नेतृत्वम
एव
एव
च सर्व
सर्व
लोकाधिपत्यम
लोकाधिपत्यम
च वेदशास्त्रवित् अर्हति सैनापत्यम
सैनापत्यम
सेनापति का पद च तथा राज्यम
राज्यम
शासक का पद च
तथा
दंड अनुशासन नेतृत्वम नेतृत्व एव निश्चय ही च तथा सर्व समस्त लोकाधिपत्यम
लोकों का स्वामित्व
च तथा वेदशास्त्रविद वैदिक साहित्य का ज्ञाता अर्हति पात्र होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेश भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्णतया शिक्षित हो सेनापति राज्य का शासक दंडदाता तथा सारे लोक का स्वामी होने का पात्र होता है, अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए। जब संसार भर में राजतंत्र का बोलबाला था तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों की परिषद ही निर्देश देती थी। राज्य का शासक राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना कार्य करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजागण तानाशाह थे, नहीं वे अपने को राज्य का स्वामी समझते थे। राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह वे ईशोपनिषद के इस आदेश से परिचित होते थे, ईशावाश्यम इदम सर्वम, कुछ भी विद्यमान है वह श्री भगवान का है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वे सभी लोगों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। ऐसा होने से कोई भी अपने को राज्य का स्वामी नहीं कह सकता। राज्य के राजा राष्ट्रपति या अध्यक्ष को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वह स्वामी नहीं अपितु दास है। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति यह भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं, वे अपने को जनता का दास समझते हैं। वर्तमान प्रजातंत्र सरकार अपने को जनता की सरकार घोषित करती है। ऐसी सरकार तो जनता द्वारा जनता के लिए है, किंतु वेदों में इस प्रकार की सरकार की स्वीकृति नहीं दी गई है। वेदों का मत है कि राज्य का सर्व संचालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, अतः इसे भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो वेदों की शिक्षाओं से भिज्ञ हों। वेद शास्त्रविद अर्हति, वेदों में निश्चित आदेश हैं कि राजा सेनापति सैनिक तथा नागरिक किस प्रकार आचरण करें। दुर्भाग्यवश इस युग में अनेक ऐसे तथाकथित दार्शनिक हैं जो किसी प्रमाण का उद्धरण दिए बिना आदेश देते हैं और अनेक नेता उनके अवैधानिक आदेश का पालन करते हैं, फलतः लोग प्रसन्न नहीं हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत, जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं, पूर्ण नहीं है। वैदिक साम्यवाद के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखो नहीं मरना चाहिए। इस समय ऐसे अनेक भ्रष्ट संस्थाएं हैं जो भूखे लोगों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र कर रही हैं, किंतु वे इस धन का निश्चित रूप से दुरुपयोग करती हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भुखमरी का प्रश्न ही न उठे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि वह छिपकली या सर्प तक को भूखों न मरने दे, उन्हें भी भोजन दिया जाए। वास्तव में भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर एक को भोजन मिले। वेदों में कठोपनिषद 2:2-13 में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, अतः भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई भूखों मरता है तो तथाकथित शासक, अधीक्षक या राष्ट्रपति की दुर्व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। अतः यह स्पष्ट है, जो व्यक्ति वैदिक आदेशों में पारंगत, वेद शास्त्रवित न हो, वह राष्ट्रपति, अधीक्षक आदि का चुनाव न लड़े। पहले राजा राजर्षि होते थे, जिसका अर्थ होता है कि यद्यपि वे राजा की तरह से कार्य करते थे, किंतु वे साधु पुरुष होते थे, क्योंकि वे वेदों की आज्ञाओं का पालन चलाते थे और साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य करते थे। इस व्यवस्था के अनुसार आज के सारे राष्ट्रपति, अधीक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अपने अपने पदों के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं है और वे बड़े बड़े साधुओं तथा ब्राह्मणों से निर्देश नहीं प्राप्त करते। वेदों तथा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा के कारण ही पृथु महाराज के पिता राजा वेण को ब्राह्मणों ने मार डाला था। अतः पृथु महाराज भरी भांति जानते थे कि उन्हें साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के सेवक के रूप में इस लोक का शासन करना शोभा देता है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बहुत कठोर शब्दों में अपने इस तात्पर्य में सार कह रहे हैं कि जो ये श्लोक है उसके अनुसार आज के जितने भी राष्ट्रपति, अधीक्षक या मुख्य कार्यकारी हैं, वे अपने पदों के लिए अयोग्य हैं। कोई इसको पढ़ेगा, कार्यकारी शासक, राष्ट्रपति, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, तो बहुत डिस्टर्ब होगा और हो सकता है कि इस्कॉन के खिलाफ कुछ कार्यवाही भी करें। ऐसे बहुत सारे अंश हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं। तो यहाँ पर पृथु महाराज के उदाहरण से समाज की स्थिति कैसी होनी चाहिए, शासन किस प्रकार से होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, ये सबका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। तो कथा यहाँ चल रही है कि पृथु महाराज के जो पिता थे का नाम था वेण, जो शासक होने लायक नहीं थे, लेकिन वेण के पिता की जब मृत्यु हुई तो कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं था शासन करने के लिए, इसलिए और उसके कारण शासक ना होने के कारण जो समाज में दुराचारी लोग होते हैं उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। इसलिए वेण को अयोग्य होने पर भी शासक बना दिया गया कि कम से कम जो चोर उचक्के हैं वो तो कुछ सीमित रहेंगे। तो वेण की वजह से वो चोर उचक्के तो सीमित हो गए, लेकिन वेण अपने आप में बहुत बड़ा आपताई था, तो असुर था। असुर हमेशा आपताई होते हैं, क्योंकि वो समाज में हमेशा अशांति का वातावरण पैदा करते हैं। तो वेण की वजह से एक प्रकार के चोर चके कम हुए, लेकिन सरेआम किसी को भी भगवान की सेवा भक्ति करने का मौका नहीं था और धीरे धीरे पूरी प्रजा परेशान थी। इसलिए फिर ब्राह्मणों ने मंत्रों से वेण को मार दिया और वेण के शरीर का मंथन किया और उससे पृथु महाराज उत्पन्न हुए, जो शक्ति अवेश अवतार, भगवान के शक्ति अवेश अवतार हैं, जो एक आदर्श शासक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर उनके शासन के दौरान उन्होंने हम इससे पहले के अध्याय में पढ़े किस प्रकार से उन्होंने पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संपदा उत्पन्न हो, अन्न उत्पन्न हो, जिससे कि प्रजा सुख शांति जी सके, और किस प्रकार से सभी लोग अपना अपना निर्दिष्ट कार्य कर सकें, यज्ञ इत्यादि कर सकें, इसके लिए अनेक आयोजन किए। और अभी चार जो कुमार हैं वो उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, जो ये लक्षण हैं कि पृथु महाराज बहुत योग्य शासक हैं, क्योंकि कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो सामान्य रूप से किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तो वो उनकी सभा में आए हैं, तो इसका अर्थ है कि पृथु महाराज से वो अत्यंत प्रसन्न हैं। पृथु महाराज वो जो चार कुमार हैं यानी जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो सभी वेद शास्त्रों के मर्म से परिचित हैं, उनको अपना सभी राज्य सब कुछ उनको समर्पित करते हैं। तो ये आज का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि चूंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्णतया शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे लोक का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जो जीव माया के द्वारा बद्ध होते हैं यानी जो भ्रम में है, जो अज्ञानता में है, उनको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वेद और शास्त्रों की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी को स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शास्त्रों के द्वारा उनके हृदय में शास्त्रों का ज्ञान स्फुरित करते हैं, और फिर आगे व्यास के रूप में जो भगवान के अवतार हैं वो शास्त्रों को लिखित रूप देते हैं और उसकी उसको विस्तृत रूप से समझाते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है वेद शास्त्र वित्त, जो वेद और शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति है उसे ही शासक बनने का अधिकार है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि की संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए हुई है, अनायास ही नहीं हुई है, बिना किसी कारण के नहीं हुई है, जैसा कि असुर लोग मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, असुर लोग क्या मानते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। असुर लोग ऐसा मानते हैं कि इस सृष्टि के पीछे कोई वास्तविक सत्य नहीं है, ये सब अपने आप बन गया है, और इस सृष्टि के पीछे कोई विशेष हेतु नहीं है। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और यही उसका एकमात्र प्रयोजन है सृष्टि का। सभी जीवों का, प्राणियों का एकमात्र कर्तव्य है इंद्रिय भोग से अधिक सुखी रहने का प्रयास करना। असत्यम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतु कम, काम अर्थात भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, इसके अलावा और कोई हेतु है ही नहीं इस सृष्टि में। इसलिए वो जो आधुनिक विचार आता है ईट ड्रिंक एंड मैरी, वो इस श्लोक से आता है, खाओ पियो और मौज करो। तो जो खाओ पियो मौज करो है ये भगवद गीता के अनुसार असुर लोक का लक्षण है। तो समाज में हमेशा से दो प्रकार के लोग रहते हैं, भगवान यही 16वें अध्याय में भी कहते हैं, सुर और असुर। सुर की परिभाषा क्या है, विष्णु भक्ता जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता कहलाते हैं, सुर कहलाते हैं। असुर तद विपर्यया, और असुर जो हैं वो उनसे विपरीत, जो भगवान विष्णु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं खुद ईश्वर हूं और तो कोई ईश्वर नहीं है, जिसके हाथ में शक्ति है वो ईश्वर है, इस संसार में जो अपना वर्चस्व दिखा सके वो ईश्वर है। तो जो आधुनिक विचार है माइट मेक्स राइट, वो यहां से आता है, जिसके पास शक्ति है वो सही है, यानी वो ईश्वर है, वही जानता है संसार को कैसे चलाना है, क्या हेतु है, माइट मेक्स राइट। तो इस प्रकार से हमेशा से दो व्यक्ति रहते हैं, सुर और असुर। जो देवतागण हैं वो शास्त्र के अनुसार शासन चलाते हैं, क्योंकि वे विष्णु भक्त होते हैं, वे जानते हैं कि इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सभी सृष्टि का सृजन मेरे से हुआ है। असुर कहते हैं ये सब बाय चांस हुआ है, अपने आप हुआ है। तो इस विचारधारा के अनुसार यानी दो प्रकार की विचारधाराएं हैं सुर और असुर के द्वारा। तो सुर विचारधारा के अनुसार है, ईशावाश्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मागदत अस्थित धनम। सभी कुछ भगवान का है, ईश्वर सभी के स्वामी हैं। भोक्तारम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सबके स्वामी हैं। एक व्यक्ति है जो सभी की सृष्टि करता है, जो सभी का स्वामी है, जो सभी का भोक्ता है, ये है देवताओं की विचारधारा। और इसी विचारधारा के द्वारा प्रतिपादित होता है तेन त्यक्तेन भुंजिता मागद कश्चित धनम, जब सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ उसी के हेतु के लिए प्रयोग में आना चाहिए, हम सब उसके दास हैं, तो हर चीज उसकी सेवा में अर्पित होनी चाहिए और हर चीज का इस्तेमाल इस प्रकार से होना चाहिए जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि वो सबके स्वामी हैं। इसके विपरीत जो आसुरी विचारधारा है, जिसमें माना जाता है कि ईश्वर अहम अहम भोगी, हम खुद ईश्वर हैं और कोई जो हम में से जो ही सबसे बड़ा है वही ईश्वर है, यानी कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति जिस तरह शक्ति है वही ईश्वर होने लायक है। अर्थात इस सृष्टि के सृजन के पीछे इस सृष्टि से ऊपर कोई और सत्ता नहीं है। तो उस विचारधारा के अनुसार जो मेंटेलिटी आती है वो आती है कि जितना हम भोग करना चाहें हमें भोग करना चाहिए, अपने इंद्रियों का तृप्ति करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो शासन क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। तो एक है पितु महाराज, जिसके उदाहरण है शासन के, जिसमें शासक अपने को भगवान का दास मानता है, भगवान का सेवक मानता है, और दूसरी तरफ शासक अपने को जनता का दास मानता है, रूपा जी लिखते हैं। तो दास तो वो भी है अल्टीमेटली, लेकिन एक है जनता का दास और एक है भगवान का दास, दो प्रकार के शासक। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें शासक अपने जनता का दास मानता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम अर्थात गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर टू द पीपल फॉर द पीपल, जनता की, नागरिक की ही सरकार, नागरिकों के लिए ही, नागरिकों के द्वारा। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इसमें जो व्यक्ति शासक चुन के आता है वो जन समुदाय खुद अपने आप में से एक को राजा चुनते हैं। तो अगर जन समुदाय जैसा भी हो वैसा ही राजा बनेगा, क्योंकि उनमें से ही व्यक्ति राजा बन रहा है। अगर जन समुदाय राक्षस है तो नेता कौन बनेगा, सबसे बड़ा राक्षस बनेगा, जैसा कि भागवत में कहा गया है स्वविदवर होस्ट खरे संसुते पुरुषा पशु, जो कौन कौन से चार जानवर आए? घोड़ा, ऊंट, गधा, स्व और सुअर, हॉग। तो जो पशु हैं वो अपने में से ही सबसे बड़े पशु को अपना नेता चुनेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में यदि समन जन सामान्य पशुवत है तो स्वाभाविक है कि नेता जो है वो पशु होगा, लेकिन सबसे बलिष्ठ पशु होगा। तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत जो स्वामी होता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुना गया है, इसलिए वो अपने को नागरिकों का दास मानता है। नागरिकों का दास होने की वजह से वो अपना मैनिफेस्टो, अपना शासन करने की नीतियां कैसे बनाता है, जिससे कि जनता को जो प्रिय है वैसा ही मैं शासन करूं, क्योंकि वही मुझे वोट देंगे, इसलिए मैं जन प्रिय बनूं, जनता को प्रिय करूं। लेकिन जो वैदिक प्रणाली है जिसमें शासक नरदेव होता है, यानी भगवान का प्रतिनिधि होता है, वहां पर शासक की पॉलिसी डिपेंड करती है कि मैं कैसे भगवान के इच्छा के अनुसार शासन करूं। इसलिए वो जो ब्राह्मण हैं, जो भगवान के सर्वप्रथम प्रतिनिधि हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार शासन करता है। फिर एक तीसरा सिस्टम है शासन का, मोनोक्रेटिक, यानी कि तानाशाही, जिसमें शक्ति के बलबूते पर कोई व्यक्ति अपने को शासक घोषित करता है और अपने मनमाने ढंग से शासन करता है, जो उसको प्रिय है वैसा शासन करता है। इस संदर्भ में हम देखते हैं उदाहरण हिटलर इत्यादि का। तो ये तीन प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, एक जनतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक मोनोक्रेटिक सिस्टम और एक वैदिक प्रणाली के अनुसार सिस्टम। तो इन तीनों में प्रजा का क्या होता है? तो यहां पर उपाय लिखते हैं कि जो जनतंत्र है या जो तानाशाही है, उसमें प्रजा हमेशा दुखी रहती है, क्योंकि जैसा भागवतम में कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु। सामान्यतः जो अंधकार में जीव हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि हमारा स्वार्थ, हमारा परम हित भगवान विष्णु की उपासना में, सेवा में है। तो जो जनतंत्र है या जो तानाशाही शासक है, शासन है, उसमें नते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु, यानी कि उनको भगवान की सत्ता है, पूरा ये सृष्टि का हेतु भगवान की सेवा में लोगों को प्रगतिशील बनाना है, जिससे कि अंततः वे सभी अपने माया जाल से निकल करके सभी भगवान की वैकुंठ धाम जा सकें, इस भावना से पूरी तरह से विरक्त होता है। इसीलिए ऐसे कोई भी तंत्र के अंदर जो प्रजा होती है वो कभी सुखी नहीं रह सकती है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो पूरी संस्कृति है वो अनिश्वरवाद के ऊपर टिकी है, गॉडलेसनेस के ऊपर टिकी है, जिसे हम बहुत एडवांस मानते हैं, वास्तव में वो जानवरों से भी बदतर है। आजकल विशेष रूप से सब हम भारतीय जो ये संस्कृति की कहने लायक जीवन नहीं है, उसकी नकल करने के लिए बहुत दिमाग लगा रहे हैं और बहुत अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हम बिल बोर्ड्स में देख सकते हैं कि आज का जो भारतीय है, और भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा संसार भी सामान्य रूप से, जो आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक जीवन प्रणाली है, सभ्यता नहीं कह सकते उसको, आधुनिक जीवन प्रणाली है, उसके बहुत, उसकी तरफ बहुत मोहित है, और उसे एडवांसमेंट, उसे प्रगति की परिभाषा दे दी गई है, जो हम सबके मन के अंदर बहुत गहराई से बैठी हुई है। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बचपन से हमारे अंदर ये बहुत गहराई से ये विचार भरा जा रहा है कि हम प्रगतिशील हैं, अभी हम प्रगति कर रहे हैं, पूरा संसार प्रगति कर रहा है। हम आदि मानव थे जिन्होंने भागवतम लिखा, वो जानवरों का शिकार करते थे और कपड़ा नहीं पहनते थे, और उनका जो विचार था वो बिल्कुल प्रकट नहीं था। ऐसे आदि मानवों से बढ़कर के आज हम प्रगतिशील हैं, जहां पर आज हमको तीर कमान लेकर के मारने की जरूरत है। हम बड़े बड़े स्लॉटर हाउस में एक साथ बहुत हजारों गाय को मार सकते हैं। हम बाद में प्रश्न रखेंगे, ये क्लास के बाद में प्रश्न का उत्तर कर, क्लास के बाद। तो अभी हम बहुत एडवांस हैं, अभी हमको तीर चलाने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग एक बटन दबा करके बहुत सारे पशु को मार सकते हैं। और अभी हम जो मांस है वो हम स्टोर कर सकते हैं, दो दो महीने के लिए, चार चार महीने, छह छह महीने के लिए डिफ्रीज कर सकते हैं उसको, और कभी भी हमको ऐसा नहीं हो कि मांस नहीं मिले, इसलिए ऐसे हम लोग प्रगतिशील हैं। और कपड़ा पहनने की बात है तो अभी हम वापस बिना कपड़े की तरफ चल रहे हैं, तो वो ज्यादा एडवांस है। और आदि मानव जो है वो ऐसे ही कोई थंडरिंग है, जैसे वो लाइट गिरती है तो उससे डर जाता था, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, तो उसी को भगवान मान लेता था। इसलिए आज हम बहुत प्रगतिशील हो गए हैं कि अब हमें पता है कि ना तो लाइटनिंग भगवान है, ना तो ये पत्थर में भगवान है, भगवान जैसे कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है ये अपने आप बम विस्फोट से सब उत्पन्न हो गया है। तो ये विचार कितना उन्नत विचार है, और इस देश के ऊपर ये पूरी सिविलाइजेशन टिकी है कि केवल इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य है। तो यदि हम एनालाइज करें तो ये जो सब आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जीवन शैली का जो विचार है वो कुत्ते बिल्लियों से कैसे ज्यादा अधिक प्रगतिशील है। एक एक आइटम हम लोग ले सकते हैं, कुत्ते बिल्ली कपड़ा नहीं पहनते तो आधुनिक मनुष्य भी कपड़ा पहनने से हिचकिचाता है। कुत्ते बिल्लियों का भी जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय भोग होता है और कुछ नहीं होता है, तो आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत अंततः जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है, ईट ड्रिंक एंड मैरी। कुत्ते बिल्ली भी भगवान है ऐसा विश्वास नहीं करते, तो आधुनिक व्यक्ति भी विश्वास नहीं करता है कि भगवान है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक विचार शैली है, आधुनिक जीवन शैली है, वो जानवरों से अधिक श्रेष्ठ है। एक्चुअली जानवर से भी गई गुजरी है, क्योंकि जानवर बुद्धिहीन होते हैं, मतलब जानवर जैसी बुद्धि होती है, इसलिए वो कम से कम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, अपने ही ऊपर खुद जहर नहीं खाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है अधिक बुद्धिशाली है, और यदि वो शास्त्रों के द्वारा मार्गदर्शन उसको नहीं मिलता है तो एक्चुअली उसकी जो स्थिति है वो जानवरों से ही बदतर हो जाती है। जानवर कम से कम ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं जिससे कि वो खुद अपना नाश करें, लेकिन मनुष्य आज आधुनिक मनुष्य ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिससे उसका खुद का नाश हो रहा है। हर तरीके से हम देखें तो जो आधुनिक व्यवस्था है प्रदूषण के द्वारा और वेपन्स के द्वारा, धीरे धीरे हम ऐसी व्यवस्था अपने आप बना रहे हैं जिससे हमारा जीवन और अधिक दुष्कर होता जा रहा है। तो इस तरीके से आधुनिक व्यक्ति जानवरों से भी बदतर है, ये चीज तोपा जी बोलते थे, और ये हम सभी को अपने हृदय में गहराई से उतारना पड़ेगा कि वर्तमान जीवन जानवर जैसा भी नहीं है, जानवर से भी बदतर है। हम भक्त बन हम यानी जब भी शुरू करें करना और मंदिर में आना भी शुरू करें, लेकिन ये विचार कि हम प्रगतिशील नहीं हैं, हम अवनति की तरफ हैं, इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम फ्लाईओवर देखते हैं तो हमको लगता है यस ये प्रगति है। जब हम बहुत बड़े मॉल्स देखते हैं तो हमको लगता है यस ये प्रगति है। जब हम कार में चलते हैं तो हमको लगता है क्यों ये प्रगति नहीं है। लेकिन कैसे वो प्रगति है, क्योंकि उस कार के अंदर बैठा आदमी, उस स्काईस्केपर के अंदर बैठा आदमी, उस हाईवे को बनाने वाला, उसमें चलने वाला आदमी, तो केवल इंद्रिय भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान रहा है। भगवान नहीं है, सब अपने आप आया है, जो केवल पागलपन है, जिसे छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि जब कोई भी चीज इस भौतिक संसार में जो हम देख रहे हैं, छोटी से छोटी चीज, जैसे भक्ति विकास महाराज ध्यान देते हैं डब्बे का, ये भी जब अपने आप नहीं आ सकती तो ये इतनी बड़ी सृष्टि कैसे अपने आप आ सकती है, जो छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो जो ये आज की सभ्यता में सब लोग ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो उसके द्वारा जो भी कार्य होगा वो कैसे प्रगति गिना जाएगा, वो बच्चे जैसी बुद्धि भी नहीं है, यानी वो पागल है, सिंपल शब्दों में कहा जाए इनसेन। रूपा जी बोलते थे आज का जो आधुनिक जो व्यक्ति है वो पागलपन है। तो हम जो भारतीय हैं, जो आंख बंद करके जिस सभ्यता जिस जीवन शैली का अनुकरण कर रहे हैं, वो पागलों इनसेन लोगों की, उनको एक्चुअली एसाइलम में होना चाहिए, उनको पागल खाने में होना चाहिए। लेकिन इतने सारे हैं कि पागल खाने में क्या पूरा जगत ही पागल खाना जैसा है, क्योंकि अलग से कहाँ रखेंगे उनको, सबके सब ऐसे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। यदि हम पाश्चात्य सभ्यता का हिस्ट्री देखें, वो लोग रियली बंदरों से आए हैं। जो डार्विन थ्योरी है उन्हीं के लिए है, सही बात है, क्योंकि वो बंदरों से आए हैं। और आदि मानव बंदरों से आए और फिर आदि मानव बने, इसलिए उनकी जीवन शैली वैसी ही है। बंदर जैसे उछलते कूदते भागते दौड़ते हैं पूरा दिन, और आदि मानव जैसे ही मांसाहार करते हैं, जैसे आदि मानव जंगली लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ऐसे ही पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन हिस्ट्री हम देखें, हमेशा एक दूसरे को के ऊपर शासन करना, इसी के ऊपर उनका पूरा हिस्ट्री है। कॉलोनाइजेशन हम देखें इंग्लैंड, उनका क्या हेतु था पूरे उनका, इंग्लैंड इंग्लिश लोग हम बोलते हैं, इंग्लिश बहुत बड़े हैं, क्या है, गुंडे हैं और कुछ नहीं है, हड़पना, दूसरे की संपत्ति हड़पना, ये उनका एकमात्र सभ्यता का केंद्र रहा है। पूरा जो फ्रांस है, जर्मनी है, हिटलर है, क्या था, सबको हड़पो हड़पो। तो जो अभी हम देखें समाज के अंदर, एक कोई बड़ा गुंडा होता है किसी की संपत्ति हड़प लेता है, बोलते हैं ओ ये कितना बुरा कर रहा है, लेकिन ये पूरी अमेरिकन और पूरे जर्मन तो आज नहीं सदियों सदियों से यही काम करते आए हैं, तो वो गुंडों से और ज्यादा क्या श्रेष्ठ हैं। और आज उनके द्वारा दिए गए जीवन शैली को हम लोग बड़े अच्छे से बहुत अपनाते हैं, वो उन्नत है। तो हम भारतीयों को विशेष रूप से ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये प्रगति नहीं है, ये पागलपन है, शीयर मैडनेस है, जिस वजह से उनका अनुकरण करते हुए आज पूरे संसार का जो व्यक्ति हैं उनका जीवन बहुत दुष्कर होता जा रहा है। जैसे यहां पर उपाय लिखते हैं कि ऐसे शासक के अंडर में नागरिक कभी सुखी नहीं रह सकते। तो हम क्यों भूल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का शासन, जिसका वर्णन यहां हमको मिलता है, परीक्षित महाराज का शासन। जब पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है होती थी, नदियां पानी से भरी रहती थी, समुद्र में खूब हीरे मोती होते थे, गाय बहुत प्रसन्नचित रहती थी, पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, धरती पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न करती थी, तो वो जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं पाश्चात्य लोग, वो आक्रमण करके भारत में आए और फिर हमको बताए कि ये सब जो लिखा है ये तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा, तो इसलिए ये सब संभव नहीं हो सकता, तुम भी भूल जाओ, ये सब बेकार है, ये सब मिथोलॉजी है, ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा हमको सिखा दिया और हम लोगों ने मान लिया। और इस तरीके से धीरे धीरे विश्वास करना छोड़ दिया और जो वर्तमान समय है उसी को सच्चाई मान करके उनकी परिभाषा जो है एडवांसमेंट की, उसी को एडवांसमेंट की परिभाषा मान लिया और उन्हीं के पदचिन्हों पर आज हम चल रहे हैं। अगर हम एनालाइज करें हिस्ट्री के अंतर्गत, तो उनको फॉलो करते हुए समाज की स्थिति दिन पे दिन बहुत बदतर होती जा रही है। लेकिन जो वर्तमान सभ्यता, वर्तमान जो जनरेशन है, और सामान्य व्यक्ति इतना एनालिटिकल नहीं होता है, इतना ज्यादा सोचता नहीं है, तो वो अपने जीवन में देखता है, हाँ देखो कुछ समय पहले तक लाइट नहीं थी गांवों में, आज लाइट आ गई है, कितनी प्रगति हो रही है। और पहले ये रोड्स नहीं थे और ये कार नहीं थी, और पहले जब आदमी को एक्सीडेंट होता था तब वो ऐसे ही रोड पे मर जाता था, लेकिन आज हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ भी एक्सीडेंट हो वहीं पर हेलीकॉप्टर आ सकता है, हार्ट अटैक हो हेलीकॉप्टर आ सकता है, और वो क्या है अहमदाबाद में बहुत सारी भी एम्बुलेंस घूमती है ना, तो जगह जगह पर एम्बुलेंस हैं और कितने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो कितना प्रगति हो रहा है। लेकिन अरे मूर्ख, पहले एक्सीडेंट ही नहीं होते थे, उसका क्या, पहले ट्रैफिक था ही नहीं, पहले कार और ये सब पागलपन था ही नहीं, तो हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं थी, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं थी, उसका क्या, हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं थी, उसका क्या। तो हम एक थोड़े से अपनी हिस्ट्री को देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि पहले स्थिति को खराब किया गया और फिर खराब स्थिति को अपने थोड़ी बुद्धि से उसका कुछ सुधारने का उपाय किया गया, और वास्तव में उस सुधार से और अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनको सुलझाने के लिए कुछ और नए उपाय किए गए जो समस्याओं से भी ज्यादा अधिक खराब थे। ये सब चीजें हम लोग नहीं देख, सामान्य व्यक्ति नहीं देखता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति क्या है, सामान्य व्यक्ति उसका जीवन शुरू होता है सुबह टीवी से, टीवी में देखता है काम क्रोध लोभ मोह, चाय पीना दिन में 50 बार, गुटखा खाना, ऐसे आदमी की बुद्धि में क्या आएगा, वो क्या एनालाइज करेगा, उसको तो जो बता दिया जाएगा न्यूज़पेपर में, जो पढ़ लेगा वही सीख लेगा। जैसे एक लेक्चर में भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि महाराज आने से पहले यहाँ इस्कॉन में आने से पहले कुछ समय के लिए कहीं जॉब करते थे, तो वो बता रहे थे कि वर्कर्स सामान्य लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है, सोचने की शक्ति नहीं होती है, तो बहुत प्रकार के न्यूज़पेपर होते हैं, तो वर्कर्स सब मिलकर के आपस में डिस्कशन करते हैं अलग अलग समस्याओं पे, राष्ट्र की समस्याओं पे होता है, देखते हैं हम सब मिलते हैं और सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करो कि वो व्यक्ति का विचार कैसे हुआ, तो मॉर्निंग में जो न्यूज पेपर जिसने पढ़ा वो ही सच हुआ, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, जिसने जो न्यूज पेपर पढ़ा उसको लगता है ये ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने वो न्यूज पेपर पढ़ा है, यानी बिल्कुल बुद्धिहीन लोग हैं, उनको जो बोल दिया जाए वो वैसे ही सुन लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब वोट दी जाएंगी तो कैसे लोग नेता बनेंगे हम लोग सोच सकते हैं, तो ऐसे लोग फिर बुक्स लिख रहे हैं, एजुकेशनिस्ट बन रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए वो बता रहे हैं, जो लोग 20 बार चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं और सब व्यभिचार करते हैं, ऐसे लोग एजुकेशनिस्ट हैं, ऐसे लोग शासक हैं, तो समाज का क्या हाल होगा, जानवर से भी बुरा हाल होगा और कुछ नहीं हो सकता जो हम देख रहे हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग भारतीय लोग भी जिन ऐसी सुंदर ग्रंथों के अंदर जहाँ सब मार्गदर्शन है कैसा शासक होना चाहिए, कैसे ब्राह्मण होना चाहिए, वो सबको आंख बंद करके, वो जो टीवी में देखते हैं टीवी को गुरु बना करके, ये एडवांसमेंट है, ऐसा होना चाहिए, इट्स अ मैड रैट रेस, पागलपन हो रहा है, तो हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि जो जिस स्थिति में होता है उसको लगता है इट्स ओके, ठीक है। तो हालांकि हम अधिक से अधिक संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी हो रही है हमको, हम हर दिन कोसते हैं शासकों को, एक प्रभुपाद जी बोलते थे आप एक शासक को चुनते हैं, उस समय निक्सन था अमेरिका का, फिर आपने पहले निक्सन को चुना, अभी उसी को आप निकाल रहे हैं, तो ये क्या पागलपन है, आपने क्यों चुना फिर उसको, अभी आप उसको हटा रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए, एक बार कांग्रेस, उसका बीजेपी थोड़े दिन रहेगी, फिर उसका फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो वही गोल घूमते रहते हैं उसी में घूमते हैं, तो ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसे हम लोग कभी कभी भक्तों बात करते हैं, जब इस्कॉन के संपर्क में हम लोग आते हैं, कुछ साल तक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर जब संसार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो कई बार अपने पर शंका होने लगती है कि हम जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, कि लोग इतने पागल हो सकते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में 100% 100% लोग इतने पागल हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता अपने पर कि ऐसा भी संभव, सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम सोचते आए थे, देखते आए थे कि कोई पीएचडी है इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत अमीर है तो उसका मतलब बड़ा आदमी है, कोई बहुत प्रोफेसर है तो मतलब बड़ा आदमी है। लेकिन जब हम ये शास्त्रों की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं सब पागल दिखते हैं, एक से बढ़कर एक पागल दिखते हैं, सब कार्टून दिखते हैं, बड़े बड़े पीएचडी उनकी जब हम बात सुनते हैं सुनते हैं, क्या ये तो पागल खाने में होना चाहिए। तो और ऐसा एक नहीं है, सबके सब ऐसे हैं। तो इसलिए हमको अचंभा होता है कि क्या पागलपन इतनी वाइड स्प्रेड हो सकता है। लेकिन यही माया मुद्दे रहा जीव, क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर जो जीव हैं वो सभी पागल पागल हैं। पिशाच ही रही है ना मत छिन्न हो, यही माया मुद्दे, यही स्वभाव उदय हो। चैतन्य चेतावनी ने कहा गया है कि भौतिक जगत में जो लोग हैं वो कैसे हैं, जैसे कि पिशाचनी किसी के पीछे पड़ गई और उसकी मति छिन्न हो गई हो, ऐसे ये भौतिक जगत में है। तो अभी जब हम शास्त्र देखते हैं तो सब लगता है कि हाँ सबके पीछे भूत पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, तब लगता है कि हाँ पिशाचनी सबके पीछे, क्योंकि हम उससे बाहर निकले हैं, क्योंकि पहले हमारे पीछे भी पिशाचनी थी, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, अपनी सब एक ही जैसे भाई बंधु दिखते थे। लेकिन जब हम उससे भी बाहर थोड़ा भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी की कृपा से निकलते हैं तो हमको एकदम से पता चलता है कि ओ वास्तव में तो सब जैसे भूत किसी के पीछे पड़ जाए तो वो क्या बोलता है, क्या कुछ उसका कुछ सेंस नहीं निकलता है, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही सामान्य जनता ऐसी है। तो इसलिए भगवान की जो व्यवस्था थी है वो इस प्रकार से है कि जो माया रूपी पिशाचनी सबको ग्रसित किए हुए है, ऐसे जीवों को माया मुग्धर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान कहते हैं, उनको इस भूत से इस माया पिशाचनी से चंगुल से निकाला जाए, ये व्यवस्था है भगवान की जो हम इन शास्त्रों के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो वो है हमारा मिशन कि भगवान की इस इच्छा को समझते हुए, उनकी योजना को समझते हुए जो ब्राह्मण जो वैष्णव हैं पूरे समाज को मार्ग निर्देशन दें, ऐसी व्यवस्था को लागू करने में, समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करने में, जिससे ये पागलपन से हम जनसाधारण बाहर निकल सके। इसके बिना सामान्य जनता को सुखी संपन्न रखने के सभी प्रयास विफल होंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि तो होयला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करीकर पर उपकार। विशेष रूप से जो भारतीय हैं उनका जीवन परोपकार के लिए है। और आज भारतीय लोग क्या सोच रहे हैं, भारतीय जीवन अमेरिका की नकल करने के लिए। हमें शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। और विशेष रूप से जितना हम श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें और अधिक लज्जा अनुभव होनी चाहिए कि हम क्या कहां, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भारतीयों का कार्य इंद्रिय भोग, नायम देहो दे भाजान लोके कष्टान कामान रहते विडगुजामी, सुअर की तरह से इंद्रिय भोग के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये तो यस्मात ब्रह्म स्वाख्यम तपस्या के लिए। और आज हम जो भारतीय हैं इन सभी चीजों को भूल करके बिल्कुल एग्जैक्टली सुकर कुकर जैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ, ये एक बहुत गंभीर आंदोलन है। जैसा श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस सोसाइटी विल बी नोन टू हैव सेव्ड ह्यूमन काइंड इन द मोस्ट इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री। हमारी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ और ये श्रीमद भागवतम पर आधारित है, बहुत गहरे अंधकार के समय में मनुष्य सभ्यता को उसने रोशनी दी, इसके लिए वो जानी जाएगी। इसलिए हम सभी जो श्री प्रभुपाद के अनुयायी हैं उनका ये परम उत्तरदायित्व है कि हम आधुनिक ये जो विचारधारा इससे प्रभावित ना हो कि हम ये एडवांस प्रगति कर रहे हैं इसमें इससे प्रभावित ना हो, बल्कि अपनी जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति है उसके प्रति गौरवान्वित होना अनुभव करना शुरू करें। ये हमारी धरोहर है, हम ब्रह्मा जी के वंशज हैं, बंदरों के वंशज नहीं हैं। हमारे ग्रंथ ये श्रीमद् भागवतम है, वो डार्विनवाद जो बकवास है वो नहीं है। और अपने जीवन में ये वैदिक संस्कृति को अपनाएं, जो संस्कृति भगवत धाम जाने के लिए अनुकूल है। और जो आधुनिक जीवन शैली है उसके अंदर जो निहित अनिश्वरवाद है और कैसे वो हमको प्रभावित करता है उसको समझें, अनुभव करें उसको, जिससे कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा हो सके कि ये जो आधुनिक शैली है उसे हटाना है। हम सबका ये कर्तव्य है। तो अधिक से अधिक जितना हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ेंगे और इस प्रकार से विचार विमर्श करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये जो हम भी जो माया के मुक्त माया से मुक्त हैं, हमारी बुद्धि भी स्पष्ट होगी, शुद्ध होगी, और तब हम स्पष्टता देख सकेंगे कि कितना महत्वपूर्ण कार्य हमारे आगे है। ये कोई जब हम स्टार्टिंग में इस्कॉन के संपर्क में आते हैं तब अनेक अनेक प्रकार के संशय होते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस्कॉन भी उनमें से कोई एक है क्या, कौन सही है क्या है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे भक्ति सेवा करते हैं तब हमारे को श्रद्धा होती है कि ये कोई एक मात्र एक और ओपिनियन नहीं है, ये वास्तव में दी रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, एकमात्र सच है। ये विश्वास हमको होगा यदि हम भक्ति सेवा करेंगे। और फिर हमको स्वतः प्रेरणा होगी, प्रेरणा प्राप्त होगी कि कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है परोपकार करना। और परोपकार का एकमात्र माध्यम है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इन ग्रंथों के आधार पर लोगों को मार्गदर्शन देना। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल चाहते थे कि समय आने पर जो शासक है वो कृष्ण भावनामृत शासक हो। उसकी पूरी योजना श्री प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के माध्यम से की है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो समय आएगा जब शासक जो हैं वो कृष्ण वो राज ऋषि होंगे दोबारा से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि 10,000 वर्ष के अंतर्गत स्वर्णिम युग की तरह से 10,000 वर्ष हैं, जिसमें हर गांव में हर जगह पृथ्वी से आचित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो के भोर नाम। तो ये संभव होगा, इसलिए निश्चित रूप से समय 10,000 वर्ष के अंतर्गत समय आएगा जब शासक कृष्ण भावनामृत में होंगे। प्रभुपाद जी ने इसी उद्देश्य से इंदिरा गांधी को 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था कि कैसे अगर आप भारत को सुखी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कि जो हमारे एमपी हैं वो ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए। क्योंकि एमपी मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब या लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब ब्राह्मण परिषद, वो सब एडवाइजर्स हैं। और आजकल के एमपी तो वो एडवाइजरी कमेटी जब ऐसी होगी तो क्या होगा। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से अमेरिका अमेरिकन को बोलते थे कि आज सारा संसार अमेरिका की होड़ में है, तो यार आप अमेरिकन यदि आप इसको समझेंगे और अमेरिका को कृष्ण भावना भावित देश बनाएंगे तो पूरा संसार का लाभ होगा। तो दोनों तरीके से भारत के लोग भी जागृत होंगे, वो भी अगर प्रचार कर पाए, या अमेरिकन उससे ऐसे ही हुआ, अमेरिकन जागृत हुए और फिर भारतीयों को प्रचार किए। एनीवे जो भी है, चाहे भारतीय चाहे अमेरिकन है, सबका ये उत्तरदायित्व है कि इस तथ्य की गहराई को हम समझें। ये हॉबी नहीं है, ये सुपरफिशियल नहीं है, ये बहुत गहरी जिम्मेदारी है अपने जीवन को सफल बनाने की और दूसरे को परोपकार करने की। तब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे जब हम परोपकार करें, परोपकार करने की भावना रखेंगे। केवल अपने ही उत्थान से प्रसन्न नहीं होंगे जबकि परोपकार करेंगे। प्रभुपाद जी का ये मूड था, जैसे प्रभुपाद जी बाबा बोलते थे प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज नहीं चाहते थे कि केवल उनका उद्धार हो जाए, बोलते थे नहीं मैं तो अपने लिए चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं तो हमेशा आपका चिंतन करता हूं, लेकिन मैं इन दुष्ट लोगों को देख करके बहुत चिंतित हूं जो नारकीय जीवन जी रहे हैं और नरक बना रहे हैं इसी पृथ्वी को और आगे नरक के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उनको देख करके मैं चिंतित हूं कि उनका उद्धार कैसे हो। तो ये जो भावना भक्त अपने हृदय में ग्रहण करेगा, जो प्रहलाद महाराज के पदचिन्हों पर चलते हुए गहराई से जन साधारण समुदाय को संसार को कृष्ण भावनामृत की भेंट देने के लिए उत्साही होगा, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सबसे आसानी से ग्रहण कर पाएगा, वो खुद कृष्ण प्रेम के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। तो आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाईला, तो स्वयं उसके लिए पहले आचरण भी करना होगा और फिर प्रचार भी करना होगा। इन दोनों चीजों का समन्वय रखते हुए भक्ति यदि आगे बढ़ेंगे तो वो अपना जीवन भक्ति में सफल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ आश्रम भागवतम की कोई कमेंट है किसी का, कोई प्रश्न है? वही वही बैठे कहिए।
जो नर बकरे काटता है, मुर्गे काटता है, भैंसे काटता है और गाय काटता है और मच्छी काटता है, शराब और हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और डैनी और अमजद खान और प्रेम चोपड़ा और तारा सिंह बैठ
तमाम सुन क्वेश्चन
छात्रों की कविजी के विषय में साम्यवाद कबीर के विषय में क्या विचार है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक्चुअली वैदिक कम्युनिज्म, वैदिक कम्युनिज्म के अनुसार ईशावास्य में दम सर्वम। कम्युनिज्म क्या है? जो डायलेक्टिक कम्युनिज्म, यानी कि तर्क के आधार पर निश्चित किया जाए कि जो देश है वो सुप्रीम है और हर व्यक्ति नागरिक देश को यूनिट मानते हुए, केंद्र मानते हुए सब कार्य करे। लेकिन वैदिक कम्युनिज्म है ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ भगवान की संपत्ति है और हर चीज भगवान की सेवा के लिए युक्त की जाए। तो भगवान की सेवा अर्थात उसका प्रथम चरण है सबको माया से निकाल करके भगवान की तरफ प्रेरित करें, ऐसी व्यवस्था हो, चाहे वो राजतंत्र है, चाहे वो एजुकेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका लक्ष्य हो कृष्ण भावनामृत। ये वैदिक कम्युनिज्म है, हर व्यक्ति सेंटर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे। क्या है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्यते पंत न अन्य तत्तोष कारणम। ये वैदिक कम्युनिज्म है कि जितने भी वर्ण और आश्रम के लोग हैं जो समाज के सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो अपने अपने कार्य से भगवान को संतुष्ट करें, ये वैदिक कम्युनिज्म है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये एक प्रकार का एनफोर्समेंट नहीं है, व्हाट अबाउट फ्री विल? नहीं, कम्युनिज्म के अंदर भी फ्री विल मींस यू आर बाउंड बाय द लॉ, आप सरकार के नियमों से तो बाध्य हैं। सो फ्री विल डज नॉट मीन यू कैन डू एनीथिंग, वो तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। जानवरों के जीवन में भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा फ्री हैं मनुष्य के ओपिनियन के अनुसार, जानवर सबसे ज्यादा फ्री हैं, सिर्फ जानवर बनना चाहते हैं, लेकिन वो भी प्रकृति के नियम बाधे हैं। लेकिन रियल फ्रीडम इज सरेंडरिंग टू लॉर्ड, दैट इज रियल फ्रीडम, बिकॉज हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीडम फॉर यू फॉर एनी लिविंग एनिटी इज फ्रीडम फ्रॉम मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। सभी जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तर स्वतंत्रता का है माया, प्रकृति के तीनों गुणों से स्वतंत्रता, ना कि भगवान से स्वतंत्रता, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जितना हम भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे उतना ही माया के द्वारा कंट्रोल होंगे। जब कोई नागरिक देश सरकार के नियमों से स्वतंत्र होने का प्रयास करता है तो वो क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर उतना ही अधिक फंस जाता है। तो इससे स्वतंत्रता है क्राइम डिपार्टमेंट से मुक्त होना, माया से मुक्त होना, ना कि भगवान की सत्ता से मुक्त होना।
So you are telling that we are not
This mythology is not true. This is not mythology. हाँ वो कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं डार्विन थ्योरी गलत है, तो आप प्रूव कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है. लेकिन क्या आप पहले कन्विंस हो गए कि डार्विन थ्योरी गलत है? व्हाट इज द प्रूफ, कैन यू एक्सप्लेन क्या है वो प्रूफ? नो बट टेल मी, एक्सप्लेन. आई कैन अंडरस्टैंड डीएनए आरएनए, सो यू कैन एक्सप्लेन मी. डू यू अंडरस्टैंड डीएनए आरएनए? लीव वर्ल्ड वाइड, वॉट यू नो यू टेल मी. आप जानते हैं, आपने आपको प्रूव करके बताया मैंने हैं? नहीं, आप क्यों विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर? आपको तो प्रूव करके नहीं बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू डोंट हैव नाउ फेथ दैट डार्विन इज ट्रू बिकॉज यू डोंट नो द प्रूफ. ओके, अभी ये जो शास्त्र हैं वो कैसे प्रूफ हैं? तो अगर आप अपने पागलपन को साइड में रख दें, आप मीन्स जन साधारण, तो अभी सोचिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए कि हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर होता है. कोई भी चीज जो सिस्टमेटिक चलती है उसके पीछे कोई पर्पज होता है. सिंपल कॉमन सेंस. आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जो चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वे में काम कर रही है और उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई पर्पज नहीं. एक उदाहरण दी आपके एक्सपीरियंस में, कोई उदाहरण नहीं है. तो फिर कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो ये सब यूनिवर्स है जो बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा है, इसके पीछे भी कोई क्रिएटर होना चाहिए, कोई पर्पज होना चाहिए. तो कम से कम आगे हम लोग ना जाएं कि कृष्ण कैसे भगवान है, वो तो बहुत आई की बात है, लेकिन कम से कम भगवान है ये तो. अगर कोई पागल नहीं है, मनुष्य कोई पागल नहीं है, तो वो ये स्वीकार कर सकता है. आप इस आर्ग्यूमेंट को गलत कह सकते हैं? कॉमन सेंस से जब तक आदमी पागल नहीं है तब तक वो स्वीकार कर सकता है कि कोई ना कोई क्रिएटर डिजाइनर होना चाहिए. तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट. नाउ हु इज गॉड, दैट फर्दर सब्जेक्ट मैटर. तो उसमें वो विस्तार विषय है, वो हम लोग एक समय पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. एक मिनट, एनीबॉडी एल्स? और कोई प्रश्न है? एक मिनट, बाद में हम लोग आपके साथ अलग से बात करें. एनी अदर कमेंट्स? या एक्चुअली डार्विन थ्योरी और टुडे डार्विन थ्योरी इज करेक्ट फॉर डार्विन, बट हरे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. प्रभुपाद की जय. दो प्रेम देवी.